नमस्कार भारत, 5 दिसंबर दिन गुरुवार, मैं हूं वात्सल्य राय। 70वीं सालगिरह पर नेटो देशों का एकजुटता पर जोर, लेकिन ट्रूडो के वायरल वीडियो पर विवाद। अमरीकी राष्ट्रपति ट्रंप बोले, झारखंड में आज थमेगा 20 सीटों पर प्रचार का शोर। वोटरों को लुभाने के लिए उम्मीदवार और स्टार प्रचारकों ने लगाई ताकत। और दुनिया जहान में पड़ताल, क्यों उबल रहा है इराक।
करप्शन बढ़ता चला जा रहा है, एजुकेशन स्कूल कॉलेजेस की बुरी हालत है, जॉब्स ही नहीं।
खबरें होंगी और भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, सृष्टि श्रीवास्तव से। नेटो की बैठक में वीआईपी रिसेप्शन के दौरान हुई बातचीत का एक वीडियो वायरल हुआ। इसमें ट्रूडो, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो और ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन अमरीकी राष्ट्रपति ट्रंप की चर्चा कर रहे थे। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया दी है, जिसमें कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और दुनिया के अन्य नेता उनका मजाक उड़ा रहे थे। ट्रंप ने वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए ट्रूडो को टू फेस्ड यानी कि दो चेहरे वाला बताया। हालांकि साथ ही उन्होंने ट्रूडो को एक अच्छा व्यक्ति भी बताया। वहीं इस पर ट्रूडो ने कहा कि अमेरिका के साथ कनाडा के बहुत मजबूत संबंध हैं। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग की सुनवाई के नए चरण में रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के बीच गहरे मतभेद सामने आए हैं। हाउस जुडिशरी कमेटी द्वारा सुनवाई के शुरुआत में डेमोक्रेट्स द्वारा बुलाए गए कानून के 3 विशेषज्ञों ने कहा कि राष्ट्रपति ने जो कुछ किया है वो स्पष्ट रूप से महाभियोग से जुड़े अपराधों की परिभाषा में सटीक बैठता है। लेकिन रिपब्लिकन द्वारा चुने गए एक प्रोफेसर जोनाथन टर्ली ने इससे असहमति जताई। उन्होंने कहा कि ये मामले सबूतों की कमी और लोगों के गुस्से पर आधारित थे। समिति के लिए गवाही देने वाली विशेषज्ञों में से एक स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय की पामेला कार्लिन ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप पर जिस व्यवहार के लिए आरोप लगाए गए हैं वह अमरीकी संवैधानिक प्रणाली के लिए खतरनाक है।
When President Trump invited, indeed demanded foreign involvement in our upcoming election,
जब राष्ट्रपति ट्रंप ने आने वाले चुनाव में विदेशी मदद का न्योता दिया, या यूं कहें कि उसकी मांग की, तो उन्होंने हमारे देश की उस भावना पर प्रहार किया जो इसे एक गणतंत्र बनाता है। प्रोफेसर फेल्डमैन ने जैसा कि अभी समझाया, ये मांग सीधी तरह से सत्ता का दुरुपयोग करना थी। मैं भी अपनी गवाही में ये बताना चाहती हूँ कि हमारे देश के चुनाव में एक विदेशी सरकार से इस तरह से मदद मांगना ताकत और पद का गंभीर दुरुपयोग है, क्योंकि यह लोकतंत्र को ही कमजोर करता है। ये थे गवाही देने पहुंची पामेला कार्लिन के शब्द। फ्रांस में लोगों को चेतावनी दी जा रही है कि वे आज रात से शुरू होने वाली राष्ट्रव्यापी परिवहन हड़ताल के कारण कुछ दिनों तक यात्रा में परेशानी का सामना कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट यूनियन ने रिटायरमेंट सिस्टम में बदलाव से जुड़ी सरकारी योजनाओं के विरोध में इस हड़ताल करने का निर्णय लिया है। पेरिस मेट्रो का ज़्यादातर हिस्सा बंद रहेगा। कई इंटरसिटी ट्रेनें, उनके साथ ही फ्रांस से ब्रिटेन के लिए यूरोस्टार सेवाओं को भी रद्द कर दिया गया है। हवाई यातायात नियंत्रकों के इस हड़ताल में शामिल होने की बात कहने के बाद सैकड़ों हवाई सेवाएं भी रुक सकती हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कई शिक्षक, डाक कर्मचारी और अस्पताल के कर्मचारी भी इस हड़ताल में हिस्सा लेंगे, लेकिन स्थानीय लोगों का मानना है कि ये हड़ताल उनके लिए असुविधाजनक होगी। मैं पेरिस के बाहर उपनगर में रहता हूँ और पेरिस में काम करता हूँ। पेरिस के साथ उपनगरों में रहने वाले कई लोगों को वास्तव में इससे मुश्किल खड़ी होगी, और अब मैं काम पे जाने के लिए चल कर जाऊँगा। मैं उन लोगों में से हूँ जो मानते हैं कि ये हड़ताल गलत है। मैं इस हड़ताल के जारी ना रहने की उम्मीद करता हूँ। ये थे एक नागरिक के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। लेबनान के राष्ट्रपति मिशेलॉन का कहना है कि नई सरकार बनाने के लिए औपचारिक संसदीय सलाह की प्रक्रिया सोमवार से शुरू होगी। हफ्तों तक चले विरोध प्रदर्शनों ने प्रधानमंत्री साद हरीरी को इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दिया था। बीबीसी समाचार।
नमस्कार भारत, आपके साथ मैं हूं वात्सल्य राय। आप ये कार्यक्रम रेडियो के साथ बीबीसी के मोबाइल ऐप और वेबसाइट पर भी सुन सकते हैं लाइव। नमस्कार भारत की शुरुआत एक अंतर्राष्ट्रीय खबर से। नेटो की 70वीं सालगिरह पर सदस्य देशों का जोर एकजुटता पर रहा। ब्रिटेन की राजधानी लंदन के करीब हुए सम्मेलन में आपसी मनमुटाव को दूर करने पर चर्चा हुई। हालांकि इसके बीच तालमेल की कमी भी उजागर हुई। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को दो चेहरे वाला बताया। इसके पहले ट्रूडो और दूसरे नेताओं का एक वीडियो सामने आया था। माना जा रहा है कि इसमें वो ट्रंप का मजाक बना रहे थे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रही हैं सृष्टि श्रीवास्तव।
नेटो की 70वीं सालगिरह पर सदस्य देशों ने एकजुटता दिखाई, लेकिन उनके बीच का तनाव छिप नहीं सका। तय कार्यक्रम के पहले घर लौट गए अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को कटघरे में खड़ा किया। ट्रंप ने कहा कि ट्रूडो के दो चेहरे हैं। इसके पहले बकिंघम पैलेस में ट्रूडो और दूसरे नेताओं की बातचीत का एक वीडियो सामने आया था। माना जा रहा है कि ट्रूडो इसमें ट्रंप का मजाक बना रहे हैं। नेटो में सहयोग के मुद्दे पर कनाडा के पीएम ट्रूडो को घेरते हुए ट्रंप ने कहा, उनके दो चेहरे हैं। ईमानदारी से कहें तो ट्रूडो एक अच्छे व्यक्ति हैं। मेरी नज़र में वो अच्छे हैं, लेकिन सच यह है कि मैंने उन्हें कहा कि वो रक्षा के लिए जीडीपी का 2% नहीं दे रहे हैं और मुझे लगता है कि इसे लेकर वो बहुत खुश नहीं हैं। कनाडा के पास पैसे हैं और उन्हें 2% देना चाहिए। ये थे अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शब्द। ट्रंप के इस बयान पर ट्रूडो ने सधी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि अमेरिका और कनाडा के बीच अच्छे रिश्ते हैं। दुनिया के मंच पर व्यापक मामलों में हम एक साथ काम कर रहे हैं। कनाडा और अमेरिका के रिश्ते अच्छे हैं और बेहद मजबूत हैं। राष्ट्रपति ट्रंप और उनकी टीम के साथ मेरे संबंध भी बहुत अच्छे हैं। ये थे कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के शब्द। ट्रूडो ने ट्रंप का मजाक बनाए जाने के मामले को ज्यादा अहमियत नहीं दी। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने सम्मेलन में कहा कि नेटो देशों को रूस को लेकर अपनी सोच बदलनी चाहिए। क्या इस मेज पर मौजूद सभी लोग रूस की पहचान एक दुश्मन के तौर पर देंगे? मुझे नहीं लगता कि ऐसा है। कुछ मुद्दों पर रूस को खतरे के तौर पर देखा जाता है, ये सच है। रूस एक पड़ोसी भी है। ये स्थिति बदलने वाली नहीं है। रूस कुछ मुद्दों पर साझेदार भी है। कुछ मुद्दों पर हम रूस के साथ काम कर रहे हैं और ठोस बातचीत भी कर रहे हैं। ये थे फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के शब्द। मैक्रों ने तुर्की की ओर से उत्तरी सीरिया के कुर्द बलों को आतंकवादी घोषित करने की मांग को भी खारिज किया। वहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा कि वो चाहते हैं कि तुर्की के इरादों को लेकर किसी तरह की गलतफहमी ना पैदा हो।
रिपोर्ट सुना रही थी सृष्टि श्रीवास्तव। रुख भारत का और अगली खबर झारखंड से। झारखंड में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार आज थम जाएगा। दूसरे दौर में 20 सीटों पर वोटिंग होनी है। इनमें मुख्यमंत्री रघुवर दास का चुनाव क्षेत्र भी शामिल है। प्रचार थमने के पहले सभी दलों ने पूरा जोर लगाया हुआ है। सुनिए रवि प्रकाश की रिपोर्ट।
आवाज दिल्ली के भाजपा अध्यक्ष और सांसद मनोज तिवारी की थी। वे कोडरमा में गीत गाकर लोगों से वोट की अपील कर रहे थे। उन्होंने दो और जगहों पर चुनावी सभाएं की। बीजेपी की तरफ से उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और शाहनवाज हुसैन ने जनसभाएं की। लगभग इसी दौरान भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मांडर में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए सर्जिकल स्ट्राइक और धारा 370 को स्क्रैप किए जाने की चर्चा की। उन्होंने कहा कि बीजेपी ही झारखंड का समुचित विकास कर सकती है।
आपके वोटों के हकदार मोदी जी ने देश को आपके विश्वास को समझो करके आगे बढ़ने का काम किया। बताइए, कभी सोचा था पाकिस्तान हमारे हाथ आए दिन हमारे ऊपर अटैक करता? मोदी जी ने एक सर्जिकल स्ट्राइक, एक सर्जिकल स्ट्राइक उरी का बदला लिया, पाकिस्तान तिलमिला गया, उसको पहली बार समझ में आ गया कि दिल्ली की गद्दी पर मोदी बैठा है।
झारखंड के चुनावी संग्राम में कल बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा की भी एंट्री हुई। उन्होंने रांची के पास एक चुनावी सभा कर कांग्रेस के लिए वोट मांगे। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनीष तिवारी भी कल रांची में थे। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार पर आर्थिक नाकामयाबी के आरोप लगाए।
जहाँ तक 370 का सवाल है, अयोध्या का सवाल है, कि इसका झारखंड के चुनाव से कोई लेना देना नहीं, और ये बात इसलिए की जा रही है क्योंकि परफॉर्मेंस के नाम पर भाजपा निलबटा सन्नाटा है झारखंड में।
झारखंड मुक्ति मोर्चा, झारखंड विकास मोर्चा और आजसू पार्टी के नेताओं ने भी विभिन्न जगहों पर रैलियां की। मौजूदा सियासी माहौल में सबकी नजरें इन क्षेत्रीय पार्टियों पर टिकी हुई हैं। कांग्रेस और राजद ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन को अपना सीएम कैंडिडेट घोषित कर रखा है। वे पहले भी राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उन्होंने कल कोल्हान प्रमंडल में कई चुनावी सभाओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार पर उद्योगपतियों के लिए काम करने के आरोप लगाए। हेमंत सोरेन ने कहा,
आप देख रहे हैं देश के अंदर की स्थिति, सारी सरकारी संस्थाएं बिक रही है, रेलवे स्टेशन बिक रहा है, रेल सारे बिक रहे हैं, प्राइवेट रेल सब भी आ गया, प्राइवेट ट्रेन, जहां आज हमारी इन ट्रेनों में महिलाएं दतवन बेचने के लिए हाट बाजार में जाती है ट्रेन से, उन ट्रेनों में उन महिलाओं को और हमारे किसानों को सब्जी ले जाने का अनुमति नहीं होगा, कोई नहीं चढ़ने देगा, सब इन लोगों ने बेच दिया।
राज्य की सबसे चर्चित सीट जमशेदपुर पूर्वी से किस्मत आजमा रहे मुख्यमंत्री और बीजेपी प्रत्याशी रघुवर दास ने भी कल विभिन्न इलाकों में जनसंपर्क कर वोट मांगे। उनके प्रतिद्वंद्वी और भाजपा के बागी सरयू राय ने भी रोड शो किया। जमशेदपुर पूर्वी समेत राज्य की 20 सीटों पर प्रचार का काम आज दोपहर 3 बजे खत्म हो जाएगा। इन सीटों पर 7 दिसंबर को वोटिंग होगी, इसके लिए प्रशासनिक तैयारियां अंतिम चरण में हैं। इस बीच झारखंड विधानसभा के नए भवन में कल देर शाम आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों ने रात 10 बजे के करीब इस आग पर काबू पाया। इसमें हुई क्षति और आग के कारणों का पता नहीं चल सका है। रवि प्रकाश, BBC रांची।
और अब बात अपनी कीमत से लोगों की आंखों में आंसू लाने वाले प्याज की। देश के कई हिस्सों में 1 किलो प्याज की कीमत 100 रुपए के पार जा चुकी है। प्याज के दाम आसमान पर क्यों है और इनकी कीमत कब कम हो सकती है, इन सवालों के साथ हमारे साथी मोहम्मद शाहिद ने बात की प्याज मंडी के तौर पर मशहूर नासिक के पत्रकार प्रवीण ठाकरे से।
यहाँ सबसे बड़ी मंडी है, लेकिन जो अभी किल्लत हो रही है प्याज की, उसका मेन रीजन है कि यहाँ प्याज की कमी। यहाँ बरसात लेट आई जुलाई में, जुलाई से जो लगातार बरसात आ रही थी, इसकी वजह से खरीफ और लेट खरीफ दो प्याज होती है, वो दोनों के दोनों बर्बाद हो गई है। तो लगभग 12 लाख मेट्रिक टन का ये कमी आ गई है प्रोडक्शन में। अभी जो भारत का पूरी खपत है वो है 50 लाख मेट्रिक टन हर महीने का एज एन एवरेज, तो उसमें 12 लाख मेट्रिक टन महाराष्ट्र से कम हुआ। 26 राज्यों में प्याज आती है, उसमें से गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्रा है, उनको भी जो प्याज था वो भी बरसात की वजह से बढ़ गया। तो इसके वजह से ओवरऑल जो है वो सिर्फ 20% प्याज जो है वो मार्केट में आ रही है, और ये सबसे बड़ी किल्लत है। और डिमांड और सप्लाई का मेल नहीं बैठ पा रहा, इसलिए जो रेट है प्याज के वो बढ़ते जा रहे हैं।
प्रवीण ठाकरे जी, अक्सर ये भी होता है कि जब किल्लत होती है तो आयात किया जाता है, क्या प्याज के मामले में ऐसा होता है कि कभी बारिश की वजह से अगर दिक्कत हो रही है तो आयात करके भी इसकी पूर्ति की जा सके?
भारत सबसे बड़ा प्याज का एक्सपोर्टर भी है, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन भारत में होता है और सबसे ज्यादा खपत भी भारत में होती है। ऐसा कोई देश नहीं है दूसरा कि जो भारत की जो डिमांड है पूरी वो पूरी कर पाए। मतलब भारत में हर साल 2,30,000 मेट्रिक टन से लेकर 2,40,000 मेट्रिक टन तक प्याज का प्रोडक्शन होता है। हम लोग जो इंपोर्ट कर पाएंगे प्याज ज्यादा से ज्यादा 50,000 मेट्रिक टन या 1,00,000 मेट्रिक टन, उससे ज्यादा हम लोग कर नहीं पाएंगे। इसके पहले भी ईरान से, अफगानिस्तान से प्याज इंपोर्ट की गई है, लेकिन उसका कोई फायदा बाजार पर नहीं दिखा है। चाइना के भी प्याज यहाँ आया है, लेकिन चाइना का प्याज भारतीय लोग पसंद नहीं करते, उसकी टेस्ट थोड़ी सी तीखी नहीं होती है।
जी प्रवीण जी, ये स्थिति कब तक रहने वाली है, क्या लगता है कि दाम कैसे नीचे आएंगे?
देखिए, बरसात जो रुकी है वो नवंबर 8 तारीख के बाद रुकी है, उसके बाद किसानों ने प्याज बोना शुरू कर दिया है। प्याज बोने के बाद 90 दिन के बाद प्याज मंडी में आ सकती है, तो नवंबर, दिसंबर और जनवरी, तो जनवरी के 15 तारीख के पास थोड़े से जो हालात है वो सामान्य होने लगेंगे, लेकिन पूरी तरह से हालात सामान्य होने, यानी प्याज जो ग्राहक को एक्सपेक्टेड है 20 रुपए किलो 30 रुपए किलो, ये तो फरवरी के बाद ही संभव होगा।
ये थे पत्रकार प्रवीण ठाकरे। और अब बात आज के अखबारों की, अखबारों ने किन खबरों को प्रमुखता से जगह दी है बताने के लिए मौजूद हैं सृष्टि श्रीवास्तव। जी सृष्टि।
जी वात्सल, आज के अखबारों में, ज़्यादातर अखबारों में कल की एक खबर जो हुई है, कल एक जो घटना हुई है, वो दिल्ली विश्वविद्यालय का जो टीचर्स एसोसिएशन है, वो पहली बार इतनी बड़ी संख्या में, लगभग 3,000 जो शिक्षक है, 3,000 से 6,000 संख्या बताई जा रही है अखबारों में, कि वो जो है उन्होंने VC ऑफिस का गेट तोड़ दिया और उन्होंने पूरे लगभग 12 से 16 घंटे तक उसका घेराव करके रखा, क्योंकि ये जो एडहॉक्स टीचर हैं इनको गेस्ट बनाने के लिए एक निर्देश 28 अगस्त को आया था, तो ये लोग मांग कर रहे हैं कि इस पत्र को वापस लिया जाए और सब शिक्षकों की जो सैलरी है नवंबर की उसे फौरन दिया जाए,
यानी अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतर।
जी जी, और सबसे बड़ी बात, इस समय DU में एग्जाम्स वगैरह भी चल रहे हैं, तो शिक्षकों ने उसको भी पूरी तरह से बॉयकॉट किया है। अगली खबर जो है, जिसको हर अखबार ने अपनी लीड बनाया हुआ है, वो है पी चिदम्बरम से जुड़ी हुई एक खबर, जिनकी जिनको जमानत मिली है हाल ही में INX मनी लॉन्ड्रिंग केस में,
कल ही मिली है उन्हें जमानत 106 दिन के बाद।
जी जी, उनकी एक खबर है, वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, और साथ ही में जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पी चिदम्बरम हैं, ये राज्यसभा की कार्रवाई में भी आज से हिस्सा लेंगे, इसको अखबारों ने बताया है। साथ ही में अखबारों की जो एक लीड खबर है वो है नागरिकता संशोधन विधेयक से जुड़ी हुई।
जी, कई अखबारों ने इसको पहली खबर बनाया
जी, इस पे कैबिनेट की मुहर लग गई है, विपक्ष के कई नेताओं ने इस पे अपनी नाराजगी जाहिर की है, और इस पे सबसे एक बयान जो है महबूबा मुफ्ती की बेटी सना इल्तिजा जावेद का एक बयान जो है, जो उन्होंने सोशल मीडिया से शेयर किया और कहा कि ये देश अब मुसलमानों का देश नहीं रहा, इसे भी कई अखबारों ने जगह दी है, अपने पहले पन्ने पर जगह दी है। साथ ही में जो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हैं, उनका एक बयान जो है उसे भी हिंदी अखबारों ने जगह दी है, जो बयान है कि अगर जो IK गुजराल की सलाह मानी गई होती तो 1984 के दंगे नहीं होते, वो इस समय पूर्व गृह मंत्री नरसिम्हा राव के बारे में बात कर रहे हैं कि उन्होंने ये अगर सलाह मानी होती, सेना बुलाई होती, तो ये दंगे नहीं होते। साथ ही में सूडान जो एक अफ्रीकी देश है, वहाँ पे कई भारतीय जो हैं, वहाँ पे जो 23 लोग हैं वो एक गैस सिलेंडर फटने से उनकी मौत हुई है, माना जा रहा है कि लगभग 18 भारतीय भी उसमें हो सकते हैं, इस बारे में भी खबर मिली है। साथ ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जो फ्री वाईफाई की घोषणा की है, उसको हर अखबार ने लगभग अपने सिटी के पहले पन्ने में जगह दी है। अवैध कॉलोनियों के मालिकाना हक का जो रास्ता साफ हुआ है, उसे भी अपनी एक जगह दी है।
जी, दिल्ली में जल्द ही चुनाव आने वाले हैं। शुक्रिया सृष्टि श्रीवास्तव अखबारों की समीक्षा के लिए। और अब दुनिया जहान। इराक में जारी सरकार विरोधी प्रदर्शनों का सिलसिला प्रधानमंत्री के इस्तीफे के बाद भी थमा नहीं है। इन प्रदर्शनों में ईरान और अमेरिका की क्या भूमिका है और इस घटनाक्रम के भारत के लिए क्या मायने हैं? दुनिया जहान में BBC संवाददाता संदीप सोनी ने यही पड़ताल की है।
दुनिया जहान। अमेरिका के पूर्व रक्षा मंत्री डोनाल्ड रम्सफेल्ड ने एक बार कहा था कि इराक एक ऐसा मुल्क है जो तेल के ऊपर तैर रहा है। इराक के पास तेल का इतना भंडार है कि उसका दोहन करके इराक की समृद्धि आसमान छू सकती है। इराक कच्चे तेल के भंडार के मामले में सऊदी अरब के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश माना जाता है, लेकिन संघर्षों और युद्धों की वजह से इराक को दशकों तक उथल पुथल का सामना करना पड़ा। इसकी गाजगिरी इराक की अर्थव्यवस्था पर, जो हमेशा लड़खड़ाती रही, और इराक के लोगों पर, जो कुछ महीने पहले तक बेहतरी की उम्मीद कर रहे थे। लेकिन सरकारी मोर्चे पर ना उम्मीद होने के बाद इराक के नौजवानों ने सड़कों पर उतरने का फैसला किया। जवाब में मिली सुरक्षा बलों की बंदूक से निकली गोलियां, इराक के अलग अलग शहरों में सरकार विरोधी प्रदर्शनों के दौरान अब तक 400 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इसके बावजूद प्रदर्शनकारी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हैं।
सबसे बड़ी वजह यह है कि वहाँ पे सक्सेसिव गवर्नमेंट, जब से नया निज़ाम आया वहाँ से एक के बाद एक फेल होती चली गई, करप्शन बढ़ता चला जा रहा है। दूसरी बात ये भी है कि वहाँ पे सिविक कम्युनिटीज जो थी, पानी, बिजली, सड़क, ये तक ये ठीक से तो उन लोगों को नहीं मुहैया करा पाए। एजुकेशन, स्कूल, कॉलेजेस की बुरी हालत है, जॉब्स हैं ही नहीं।
ये है मध्य पूर्व मामलों के जानकार कमर आगा। इराक में सूखी तपती, खारी बंजर जमीन से विरोध के बीच कैसे अंकुरित हुए, कैसे विरोध का दायरा इतना बड़ा हो गया कि प्रदर्शनों में शिया सुन्नी भी काफी हद तक एक हो गए और इराक के प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। कमर आगा।
इराक दूसरे खाड़ी के जो देश है उनसे फर्क है, इतने रिच कंट्री, फिर उनकी एस्पिरेशंस बहुत है इराकियों की। इराकी चाहते हैं कि वो भी उस क्षेत्र के शक्तिशाली देश के रूप में इमर्ज हो। इस समय ऐसा आ गया है कि लोगों का रुझान आतंकवाद से हट गया है, अब उनके पास एक ही जरिया है। हमेशा से इराकी चाहते थे कि एक लिबरल सेकुलर डेमोक्रेटिक सेटअप, उनके लिए इंडिया इज ए मॉडल, वो इंडिया को एक मॉडल के रूप में देखते हैं, कहते हैं कि सक्सेस स्टोरी है, इसी तरह का वो अपने देश में भी चाहते हैं।
दिल्ली में ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में फेलो रिसर्चर कबीर तनेजा का मानना है कि इराक के मौजूदा विरोध प्रदर्शनों की जमीन को सींचने में ईरान और अमेरिका ने बड़ी भूमिका अदा की है। उनका ये भी मानना है कि इराक के लोगों की मौजूदा हालत काफी हद तक ईरान और अमेरिका की वजह से है।
अमेरिका का तो काफी लोग जानते हैं, 9/11 के बाद 2003 में उन्होंने इन्वेड किया था ये बोल के कि इराक में वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है और सद्दाम हुसैन की सरकार को हटाया। उसके बाद से जो भी सरकारें आई हैं उसमें अमेरिका का हाथ रहा ही है उनको चढ़ाने में, लेकिन साथ साथ में ईरान का भी हाथ रहा है। जो डिविजन्स हैं इराक में सुन्नी इस्लाम के बीच में और शिया इस्लाम के बीच में, वो काफी गहरे हैं। इसमें जब नई सरकारें बन रही थी 2003 के बाद, तो ईरान ने एक अपॉर्चुनिटी देखी और अपने लोग काफी लगाए उसमें जो शिया सरकार को ज्यादा फेवर करते हैं। तो अल मलिकी में भी ईरान का हाथ था और जो अभी जिन्होंने रेजिग्नेशन दिया है आदिल अब्दुल महदी, उसमें भी ईरान का हाथ था। लेकिन मजे की बात यह है, दोनों में, महदी और मलिकी में, अमेरिका और ईरान एक लेवल तक सहमत थे एक दूसरे से, थे कि ठीक है ये प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट हम दोनों के लिए काम करेगा। लेकिन जब से सीरिया का युद्ध शुरू हुआ उससे काफी प्रभावित हुआ है ईरान इराक को लेके, और एक सैटेलाइट स्टेट की तरह बनाना चाहता था उसको कि वो अपने इंटरेस्ट ग्रास पे रहे और शिया सरकार रहे उसके अंदर। ये जो खेल है अमरीका और ईरान के बीच में इराक को लेके, उसमें इराकी भी अभी भी फंसे हुए हैं।
इराक में जारी घटनाक्रम का एक पहलू ये भी है कि इन विरोध प्रदर्शनों का कोई चेहरा नहीं है, प्रदर्शनकारियों का कोई नेता नहीं है, जो इसकी एक बड़ी कमजोरी साबित हो सकता है। कबीर तनेजा इस बात से सहमत हैं।
क्योंकि टॉप लीडरशिप नहीं है प्रोटेस्ट की, तो मेरे हिसाब से ताकतें जो है अमेरिका जैसी और ईरान जैसी, वो हो सकता है आखिर में यही सफल हो जाए फिर से एक और अनस्टेबल गवर्नमेंट बिठाने की इराक में।
इराक के अलग अलग शहरों में सड़कों पर उमड़ते सैलाब की हांगकांग, अल्जीरिया, ट्यूनिशिया और सूडान में हुए विरोध प्रदर्शनों से तुलना की जा रही है। जानकार मानते हैं कि इराक में हो रहा विरोध प्रदर्शन पूरी तरह से स्थानीय लोगों का प्रदर्शन है, लेकिन इसमें कुछ विदेशी ताकतें भी अपने लिए जगह तलाश रही हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि इराक के घटनाक्रम को अरब स्प्रिंग का विस्तार माना जा रहा है। कमर आगा कहते हैं,
देखिए ये अरब स्प्रिंग खत्म ही नहीं हुई। अरब स्प्रिंग को सप्रेस कर दिया गया था कुछ समय के लिए, उसको सप्रेस किया इस्लामिक मिलिटेंट ग्रुप्स ने और वहाँ की लोकल आर्मीज ने। वो खत्म नहीं हुआ था मूवमेंट, वो दोबारा से रिवाइव फिर हो रहा है। ये आइडिया था वहाँ पे, और जैसे ही उनको मौका मिला, ISIS जैसे जैसे कमजोर हो रही है अरब वर्ल्ड में, नए लड़के जिस तरह से उसमें आना बंद हो रहे हैं, वैसे वैसे ये मूवमेंट दोबारा से रिवाइव होने लगा।
भारत के लिए इराक के घटनाक्रम के क्या मायने हैं? भारत अपने लिए किस तरह का इराक चाहेगा? क्या इराक का मौजूदा घटनाक्रम भारत के हित में है या उससे भारत के हितों पर विपरीत असर पड़ सकता है? इन सवालों का जवाब कबीर तनेजा कुछ इस तरह देते हैं।
देखिए मेरे हिसाब से अगर आप भारत की वेस्ट एशिया की तरफ पॉलिसी देखें तो काफी रियलिस्टिक पॉलिसी रही है। जब सीरिया में युद्ध शुरू हुआ था तब भी भारत ने कुछ ऐसा असाद के अगेंस्ट नहीं कहा था। भारत चाहता है कि किसी भी तरह जो ये जो देश है वेस्ट एशिया के ये स्टेबिलिटी से थोड़ा जुड़े रहें, क्योंकि भारत काफी ऑयल लेता है इराक से। और दूसरी बात, भारत के ये वेस्ट एशिया पूरे बड़े रीजन में 8 मिलियन से ज्यादा लोग काम करते हैं। और तीसरी बात, जो रेमिटेंसेस हैं, जो भारतीय लोग वहां काम करते हैं, जो वापस भारत में भेजते हैं, वो 20-25-30 बिलियन डॉलर से ऊपर है हर साल के लिए। तो भारत की ये जो 3 मेन एरियाज ऑफ कंसर्न है वो इनको लेके चलता है और देखता है कि वेस्ट एशिया में क्या होना चाहिए। फेवर में तो इंडिया की यही है कि जो भी सरकार आए किसी भी तरह, चाहे वो प्रोटेस्टर्स के हित में हो या किसी और के हित में हो, वो जल्द से जल्द हो सके, जिससे कोई ऐसी सरकार आए बगदाद में महादी साहब की सरकार के बाद जो थोड़ी स्टेबिलिटी ला सके, थोड़े इकोनॉमी फिर से रिस्टार्ट कर सके और जो लोकल इराकियों की प्रॉब्लम्स हैं उन पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दे सके, जिससे एक ऐसी सरकार आए जो कम से कम 3-4 साल लेके चले। अभी अल मलिकी की सरकार आखिरी जो थी वो 2010 से 2014 तक चली थी और वो लॉन्गेस्ट सरकार थी। उसके बाद से हमेशा अनसर्टेनिटी रही है बगदाद में।
जानकार मानते हैं कि इराक इस समय बदलाव के दौर से गुजर रहा है। बदलाव की जरूरत इराकियों के विरोध प्रदर्शनों में जाहिर हो रही है। खाड़ी देशों के साथ साथ विश्व के अन्य देश भी इराक के घटनाक्रम पर पैनी नजर रख रहे हैं। तमाम तरह की संभावनाओं के बीच आशंका इस बात की भी है कि इराक का घटनाक्रम कहीं किसी ऐसे मोड़ पर न पहुँच जाए जहाँ से आगे बढ़ने का रास्ता खोजना मुश्किल हो जाए। संदीप सोनी, BBC, दिल्ली।
दुनिया जहान के संग पर आपकी राय का हमें रहेगा इंतजार। और अब खेल की खबरें।
खेल समाचारों के साथ मैं हूं ज्योतिका सिंह और आज सबसे पहले बात क्रिकेट की करते हैं। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने ICC टेस्ट रैंकिंग में एक बार फिर नंबर 1 स्थान हासिल कर लिया है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान स्टीव स्मिथ को पछाड़ा। विराट ने बांग्लादेश के खिलाफ हाल ही में खत्म हुई टेस्ट सीरीज में अच्छा प्रदर्शन किया, जिससे उनकी रैंकिंग में सुधार आया। ICC की ओर से जारी ताजा टेस्ट रैंकिंग में विराट कोहली 928 अंकों के साथ पहले स्थान पर हैं, जबकि स्टीव स्मिथ 923 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर खिसक गए हैं। एशेज सीरीज में शानदार प्रदर्शन के बाद स्टीव स्मिथ नंबर 1 बन गए थे। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान ने अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप के लिए अपनी टीम की घोषणा कर दी है। इस युवा टीम में उस गेंदबाज को भी शामिल किया गया है जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलने वाली सीनियर टीम में शामिल था। नसीम शाह नाम के इस गेंदबाज ने अपनी तेज रफ्तार से दुनिया भर का ध्यान अपनी ओर खींचा। ICC अंडर-19 विश्व कप अगले साल दक्षिण अफ्रीका में जनवरी और फरवरी के महीने में होगा। ये ICC अंडर-19 वर्ल्ड कप का 13वां संस्करण होगा। इसमें 16 टीमें हिस्सा लेंगी। इन टीमों को 4 ग्रुपों में बांटा गया है। पाकिस्तान की टीम बांग्लादेश, जिम्बाब्वे और स्कॉटलैंड के साथ ग्रुप सी में है। भारत को न्यूजीलैंड, श्रीलंका और क्वालिफायर जापान के ग्रुप में रखा गया है। और जाने से पहले बात गोल्फ की। दुनिया के महानतम गोल्फर माने जाने वाले टाइगर वुड्स के लिए ये साल शानदार रहा। अमेरिका के टाइगर वुड्स ने इस साल 4 सर्जरी के बाद वापसी की और अगस्ता मास्टर्स का खिताब अपने नाम किया। ये 11 साल में उनका पहला मेजर खिताब भी है। खेल समाचारों में आज इतना ही।
वक्त आपसे विदा लेने का हो रहा है, लेकिन चलते चलते मुख्य समाचार सृष्टि श्रीवास्तव से।
BBC समाचार। नेटो की बैठक में VIP रिसेप्शन के दौरान हुई बातचीत का एक वीडियो वायरल होने के बाद अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया दी और कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो को 2-फेस्ड यानी 2 चेहरे वाला बताया। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग की सुनवाई के नए चरण में रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के बीच गहरे मतभेद सामने आए हैं। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के पूर्व में इबोला वायरस के प्रकोप को रोकने की कोशिश कर रहे अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा कर्मियों ने एक उपचार केंद्र पर हमले के बाद इस ऑपरेशन को निलंबित कर दिया। चांसलर मर्केल का कहना है कि जर्मनी को दो रूसी राजनयिकों को निष्कासित करने के लिए मजबूर होना पड़ा था क्योंकि उसे बर्लिन में पूर्व चेचन विद्रोही कमांडर की हत्या की जाँच में मॉस्को की कोई सहायता नहीं मिली। लेबनान के राष्ट्रपति मिशेल ऑन का कहना है कि नई सरकार बनाने के लिए औपचारिक संसदीय सलाह की प्रक्रिया सोमवार से शुरू होगी। बीबीसी समाचार।
नमस्कार, भारत में आज इतना ही। स्टूडियो की कमान थी दीपक जसरोटिया के हाथ। दिन भर में होगी आपसे अगली मुलाकात। तब तक खबरों के अपडेट के लिए आपके साथ है bbchindi.com। वात्सल्य राय को सभी साथियों के साथ दीजिए अनुमति। नमस्कार।